मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
प्रातःकालीन सत्र में हम सब के बीच में पधारे हैं सच्चे गीता ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में लाने वाले आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आए, और 1972 में जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम पास की, अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए अपने समर्पित जीवन के आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में आप सेवाएं करते रहे। और 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। करीब 17-18 वर्ष वहां रहकर आपने जी जान से सेवाएं की और फिर 2010-11 में शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया। बाबा ने आपको वहां के लिए निमित्त बनाया तो वर्तमान में आप शांतिवन में स्थित रहकर हेडक्वार्टर के सभी कैंपसेस में देश विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। आप मुख्य रूप से राज्योग प्रशिक्षिका हैं, SML की प्रशिक्षिका हैं, भट्ठे की प्रशिक्षिका हैं और बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और इसीलिए पूरे भारत भर में आप कहीं राज्योग शिविर कराने, कहीं SML की ट्रेनिंग देने, कहीं भट्ठियां कराने और कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग्स के प्रोग्राम कराने के लिए आप पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं। हेडक्वार्टर में दादी रतन मोहिनी के संग भी उनके ऑफिस का कारोबार संभालते हैं और साथ साथ में जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, अभी नीचे चल रही है, 600 कुमारियां आई हुई है, उसका भी आप कारोबार संभालते हैं। अनेक जिम्मेदारियों को लेते हुए कंधों पर ज्ञान योग में खूब अच्छी डुबकियां लगाते हैं और आपकी इस ज्ञान योग के चिंतन से, अनुभूति से ब्राह्मण परिवार लाभ लेता है। तो आज भी हम आपसे लाभ लेंगे और आज विषय रहेगा हलचल में अचल कैसे रहे। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। आज के वरदान में बाबा ने हमें विधि बता दी है। ये तो पता ही है हम सबको कि कलयुग अंत का समय चल रहा है, महापरिवर्तन की वेला है, टोटल चेंज होना ही है। तो स्वाभाविक है कि हलचल तो आनी ही है। जो अचल सत्य है वो ही टिक सकेंगे, बाकी सब उखड़ के बदल जाना है। परिस्थितियां खुद के हिसाब किताब से भी आती है और आत्माओं से भी आती है और प्रकृति से भी आती है, क्योंकि इस हलचल के बाद जो अचल अडोल रहेंगे वो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने जो आदि मध्यांत का ज्ञान दिया है तो पता है कि ये सब होना ही है। अचानक कोई बात हो जाए और लोगों को पता ना हो तो उनको बहुत शॉक लगता है, आघात लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। पर हमें तो बाबा रोज समझाते हैं, आप देखो एक भी मुरली नहीं होगी जिसमें विनाश की बातें ना हो, है ना। कुछ ना कुछ बाबा जरूर बताते रहते हैं। विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, बाबा हमें रोज मेंटली प्रिपेयर करता है। देखो कोरोना की परिस्थिति आई, बाबा के बच्चे तो नहीं घबराए ना, घबराए, सबकी बुद्धि में यही आया कि पता है बाबा ने कहा है जो कुछ होना है अचानक होना है। ऐसे नहीं कि बाबा हमारा है तो हमें बता देगा। एक मुरली में बाबा ने कहा है ना अव्यक्तवाणी में कि नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, 3 बार बाबा ने बोला। कितना भी बच्चे पूछे पर बाबा तो सबका बाबा है ना, सिर्फ हमारा थोड़ी है। तो हमें बता दें और औरों को ना बताएं तो वो तो अन्याय हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा है कि कब होगा क्या होगा नहीं बताएंगे, जो कुछ होगा वो अचानक होगा। तो बच्चे एवर रेडी रहेंगे ना, एवर रेडी, कभी भी बात आ जाए पर घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं होगी, भय नहीं लगेगा। तो हमें तो बाबा कितना तैयार करते हैं, यज्ञ शुरू हुआ तब से विनाश की बात है। दादियों को बाबा ने क्या कहा था पता है ना, कि अगली दीपावली नहीं देखेंगे। दादियां कहती कितनी दीपावली देखी। तो ऐसा नहीं है कि बाबा झूठ बोले, ऐसा नहीं है, पर बाबा का पर्पज हर आत्मा को तैयार करना है। तो टाइम फैक्टर लाइफ से जुड़ा हुआ है और मनुष्य आत्माओं को यह आदत है कि टाइम हुआ खा लो, टाइम हुआ सो जाओ, टाइम हुआ नहा लो। तो टाइम का प्रभाव रहता है ना जीवन में, तो बाबा ने भी उस बात का उपयोग किया। हम लोग आए तब बाबा ने कहा था कि 76 में विनाश हो जाएगा और ज्ञानामृत में स्पष्ट लेख आते थे आगामी 8 साल में राम राज्य की स्थापना। ऐसे ज्ञानामृत में लेख आते थे। हमने भी 72 में मैट्रिक पास किया तो हमने सोचा भी 4 साल में विनाश हो जाएगा। 4 साल कॉलेज के पढ़ के फायदा क्या है, तो हमें तो फायदा हो गया ना, हम बाबा की सेवा में लग गए। नहीं तो 4 साल लेट गिने जाते थे, आज 50 साल पूरे हो गए बाबा के बने। 72 में समर्पित हो गए, 2022 आ गए, 50 साल हो गए, नहीं तो 4 साल और कम होते ना हमारे। तो हमें कभी ऐसे नहीं हुआ क्योंकि संसार मॉरली तो गिर ही गया था ना, नैतिक रूप से तो गिर ही गया। अभी तो बाह्य ढांचा सिर्फ टूटना है, बाकी कैरेक्टर से तो सब टूट गया है। कोई जीवन में धारणाएं नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है हम तो लिमिटेड जानते हैं ना, जो न्यूज में आता होगा और वो आप सुनते होंगे तो हम लिमिटेड बातें जानते हैं, पर ऊपर से बाबा तो सब कुछ देख रहा है। इसलिए बाबा को कितना रहम आ रहा है, क्योंकि उनके आगे तो पूरा विश्व स्पष्ट है ना। हम तो कोई कोई बातें जानते हैं क्या क्या हो रहा है ना। तो इसलिए बाबा के ज्ञान से ही आदि हलचल समाप्त हो जाती है। पता है ये सब होना ही है, और ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। व्यक्ति इसलिए भारी हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, पर अब पता है कि सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ कोई ना कोई हिसाब चल रहा है। देखो, आप किसी को कहेंगे कि आज तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो वो भी कहेंगे हाँ देखो ना मुझे भी पांव बहुत दुख रहे। भाई हर एक को कुछ ना कुछ है, रहने दो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर एक को कोई ना कोई तकलीफ हा? कोई कहेगा मेरा बेटा ठीक नहीं चल रहा है, तो कोई कहेगा हाँ मेरी बहू ऐसी है। हर एक को कुछ ना कुछ हिसाब किताब है। अब हमने ही हिसाब बनाए हैं, पहले तो दुखी इसलिए होते थे कि भाई बहू ऐसा कर रही है, सास ऐसा कर रही है, फलाने ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, पर अब तो हम जानते हैं ना कि वो नहीं कर रही है, मेरा हिसाब ऐसा, मेरा उनके साथ उधार चल रहा है इसलिए मुसीबत हो रही है। तो जब खुद ही कारण है तो किसके आगे रोना है। खुद ही खुद को समझाओ कि चलो भाई मुझे रिएक्ट नहीं करना है, वो कैसा भी करे पर मैं भी ऐसा मुझे नहीं करना, वो बुरा व्यवहार करे मैं बुरा करूं, वो करे वो करे, ये तो साइकिल बुरा चलता ही रहे। दुनिया में भी ऐसे कई गांव देखे हमने, आपस में पीढ़ी दर पीढ़ी वैर चलता ही रहता है। वो उनके दो मारेंगे, ये चार मारेंगे, ये आठ मारेंगे, ये बारह मारेंगे, इतना वैर चलता ही रहता है। पर हमें बाबा ने सिखाया है कि हमें रिएक्ट नहीं करना। उसने दो गाली दी, मैं चार दूं, नहीं मुझे नहीं देनी। मैं ज्ञानी तू आत्मा, मैं योगी आत्मा हूं, मैं बाबा की बच्ची हूं, मैं तो महान हूं ना, तो मुझे अपनी महानता से व्यवहार कर। एक दो को देख के थोड़ी व्यवहार कर। मैं अच्छी हूं इसलिए मुझे अच्छा व्यवहार कर, तो हिसाब स्टॉप हो जाता है, बढ़ेगा नहीं। तो देखो उस समय बाबा की कही हुई बातें ही तो काम में आती कि बाबा ने क्या सिखाया। बाबा के साथ दुनिया वालों ने, उनके अपने ही सिंधी समाज ने कितना विरोध किया, कितना ग्लानी की। बाबा ने थोड़ी वैर रखा, वो विरोध करने वाले जब देखा देश विदेश में इतनी बड़ी संस्था बन गई तो फिर आने लगे, मिलने लगे। तो बाबा ने ना थोड़ी कहा, बाबा ने प्यार से वेलकम किया। तो हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करते हैं उसी में ही अवस्था हलचल में आती है ना। कई कहते हैं ना कि मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया फिर भी उसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि आपके पास उनका कोई जमा नहीं है, इसलिए उनका हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं। तो देखो आत्माओं के साथ आजकल आप देखिए दुनिया में हर साधन है, सुविधाएं हैं, सब चीजें क्वालिटी बन गई। आज से 100-150 वर्ष पूर्व तो कुछ भी नहीं था, लोग कितनी मेहनत से जीते थे, आज कितने साधन सुविधाएं हो गए हैं, परंतु फिर भी लोग दुखी और अशांत हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के दुख का कारण, आपसी स्वभाव संस्कार ऐसे हैं जो अभी भी दुखी होते रहते। चीजें अच्छी हो गई पर मनुष्य का मनुष्य से व्यवहार अच्छा नहीं। तो हम दूसरों के मालिक तो नहीं बन सकते ना कि भाई आप ऐसा नहीं बोलो, उनकी आदत है, संस्कार है, तो वो तो बोलेंगे। कहते हैं ना दूसरों के मुंह पर तो ताला नहीं मार सकते। बाबा ने हमें ही ज्ञानी बना दिया, सेंसिबल बना दिया, तो हमारे मन वचन कर्म अच्छे बन गए। भाई उसने बोला ना, मुझे नहीं बोलना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से क्या निकलना चाहिए, रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं, ऐसे वैसे कड़वे शब्द नहीं, निंदा ग्लानी नहीं, ये चीजें दुख देने वाली है ना। जिस मुख से बाबा का ज्ञान देते हैं उस मुख से कड़वे शब्द बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोलना। हम भी तो बाबा के बच्चे, बाबा के तरफ से सेवा करने के लिए निमित्त है, हमारे मुख से ऐसी बातें क्यों नहीं। रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं कानों से तो तेरी मेरी कर सकते हैं, क्यों किसी की ग्लानी की बातें सुने, किसी के बच्चों की ग्लानी करके आप उनके माँ बाप को खुश कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नहीं तो हम क्यों ग्लानी करें, आपस में एक दो की ग्लानी क्यों करें, जबकि पता है ना बाबा ने कहा है नंबरवार है। तो नंबरवार का मतलब है कोई ना कोई कमी तो रहेगी ना, तो वो बातें हम क्यों करें, वो चर्चा हम क्यों करें। तो हमें इन हल्की वृत्ति प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाना। स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक किताब में लिखा है कि पर चिंतन तेरा मेरा निंदा ग्लानी ईर्ष्या ये दासों के संस्कार है, राजा के नहीं। हम तो कौन है, बाबा कहते हैं ना मैं कौन सा योग सिखाता, राजयोग, राज ऋषि, मैं तो राजा बनाता हूं, बाकी तुम अपने आप अपने पुरुषार्थ और सेवा अनुसार तुम प्रजा बन जाते हो, बाकी मैं थोड़ी प्रजा योग सिखाता, बाबा तो राजयोग सिखाता। तो जितना ज्ञान स्वरूप होकर आप चलेंगे उतने हलचल से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो कदम कदम पर कुछ ना कुछ होता है और अवस्था बिगड़ती रहती। किया करा पुरुषार्थ जीरो हो जाता है। भाई कोई चीज आप बनाओ और फिर बिगाड़ दो, फिर बनाओ फिर बिगाड़ दो, तो इसको क्या कहेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी। तो छोटी छोटी बातों से अगर हम डिस्टर्ब होते रहे तो किया करा पुरुषार्थ जीरो हो जाता है। नंबर वार तो अंत तक रहेंगे, संपूर्ण बन जाएंगे फिर तो चलेंगे घर, तो कब तक अवस्था बिगाड़ते रहेंगे। इसलिए मुझे खुद निर्णय कर लेना है, मुझे खुद लक्ष्य बना लेना है। कोई भी व्यक्ति के कारण से, उनके बोल से, उनके व्यवहार से, उनके ईर्ष्या द्वेष से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। मुझे अपनी सेवा और अपने पुरुषार्थ में लगे रहना। इन बातों को माइंड नहीं कर, बाबा कहते मैं इतने अच्छे अच्छे टाइटल तुम बच्चों को देता हूं, कितने ऊंचे टाइटल बाबा हमें देते हैं बताओ, कौन कौन से टाइटल, कुमारियां बताओ, बाबा कौन से टाइटल हमें देते हैं? हाँ, मास्टर सर्वशक्तिमान, हीरो एक्टर, विश्व सेवाधारी, भगवान के बच्चे, शिव शक्ति, कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल बाबा देते। बाबा कहते उसका नशा नहीं चढ़ता है, और कोई रॉन्ग टाइटल देगा कि बुद्धू है, कुछ आता नहीं है, तो फीलिंग आ जाती। बताओ कौन सी बातें मन पर लगानी चाहिए, जो बाबा इतनी ऊंची नजर से हमें देखता है वो नशा और खुशी रहे ना। किसी ने कोई ऐसा वैसा टाइटल दे दिया तो फीलिंग में क्यों आना है, मीन्स हमने स्वीकार कर लिया ना। फीलिंग में आना मीन्स मैंने स्वीकार कर लिया। कोई कहे और मैं क्यों ऐसी बात स्वीकार कर लू, तो ये बहुत जरूरी है हम ज्ञान स्वरूप बन के चले। हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं पर सारा दिन फिर यूज करना है, इतना तो कोई नहीं समझाएगा। कितना बाबा ने हमें समझाया है, अच्छी ज्ञान की स्टडी चाहिए, मुरली का अध्ययन चाहिए। हम मुरली सुनते हैं पर सिर्फ सुनना अध्ययन नहीं कहा जाता है। अध्ययन मारा पूरी एकाग्रता से सुनना, समझना, लिखना, सार निकालना, रिवाइज करना, तो तो पूरा अध्ययन कहा जाता है और अभ्यास में लाना। आज जो बाबा ने कहा, आज सारा दिन अभ्यास में लाना, अभ्यास से अनुभवी बनते हैं। तो मेरा अपना और आप सबका भी अनुभव होगा कि बाबा के ज्ञान से 50% बातें तो खत्म हो गई ज्ञान में आते ही, है ना, सबका अनुभव। अब पहले जैसी अवस्था तो नहीं बिगड़ती है ना, पहले अवस्था बिगड़ती थी, रजाई ओढ़ के सो जाते थे, मूड ऑफ हो गया। अब तो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं ना, अब स्थिति नहीं बिगाड़नी। दूसरी बात, बड़ी दादी ने एक बार कही थी, एक बार 73 की बात है, यज्ञ में पहला मेला हुआ था दिल्ली में, रामलीला मैदान में। उस समय पूरे भारत से मदद गई थी, तब जाके मेला हुआ था। इतना थोड़ी यज्ञ में, न संख्या थी, न धन साधन सुविधा, कुछ भी नहीं था। हमें याद है सूरत से बर्तन भेजे थे, वहां पुराने कपड़े भेजे थे किचन के लिए, माना क्या क्या मदद नहीं गई, पूरे भारत से मदद गई, तब वो मेला किया। बहुत बड़ा मेला था, जगदीश भाई जी का आइडिया था। तो दादी ने, क्योंकि बड़े संगठन में पहली बार सेवा थी, कुछ ना कुछ स्वभाव संस्कार की बातें तो होती ही है ना बड़े संगठन। मैं कहूंगी यहां बैनर लगाओ, आप कहेंगे इधर लगाओ, तो ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता ही रहता है ना। तो बड़ी दादी ने क्लास कराया था, बड़ी दादी ने कहा कि तुम अज्ञानियों को कहते हो कि ज्ञानी बन जाओ तो तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही कहते हैं ना, कोई आपको अपनी तकलीफ की बातें सुनाते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि भाई आप सेंटर में आओ, 7 दिन का कोर्स करो, इससे आपको बहुत मदद मिली। तो दादी ने कहा अज्ञानियों को आप कहते हो कि ज्ञान में आओ तो आपके प्रॉब्लम मिट जाएंगे। दादी कहती है, दादी तो ऐसे ही बोलती थी ना, दादी कहती है ज्ञानियों को कि योगी बन जाओ तो सब समस्या दूर हो जाएगी। सही बात है ना, हम ज्ञानी हैं पर योगी बने, ज्ञान का स्वरूप बने। बाबा की याद से हमें इतना सुख मिलता है, आनंद मिलता है कि फिर हमें और छोटी मोटी तेरी मेरी मैं तू मान शान की कोई इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि बाबा की याद से ही कितना सुख मिलता है। तो जितना हम योगी बनते हैं, ये जो अल्पकाल की मान शान स्थान, ब्राह्मण बनने के बाद भी तो कितनी बातें आती है, अगर हम सावधान न रहे तो हमारे में भी कितनी बातें आ जाती है। पहले दुनियावी पोस्ट पोजीशन, धन रूप बुद्धि का अभिमान होता था, अब वो नहीं है। पर अब किसी को ज्ञान का अभिमान है। मैं ही अच्छी तरह समझाता हूं, किसी को योग का अभिमान होता है, किसी को सेवा का अभिमान होता है, सहयोग का अभिमान होता है। पर आप योगी बनना माना यहां से न्यारा और बाबा का प्यारा, तो हमें फीलिंग नहीं आएगी भी चलो किसी ने मान नहीं दिया, सेवा का चांस नहीं दिया, फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने स्वमान में हैं, ऊंचे हैं, खुद भगवान हमें इतना प्यार कर रहा है। तो जितने हम योगी बनेंगे, हमारा संगठन कितना भी बड़ा बन जाए, कितनी बड़ा संगठन है तो बड़ी बातें, घर में चार रहेंगे तो कम बातें आएंगे, अब इतना बड़ा परिवार है तो सोचो दादियों के सामने कितनी बातें आती। पर जब एक बार स्वीकार कर लिया कि बाबा के बच्चे हैं, हमें मिलकर सेवा करनी है, हमें मिलकर पुरुषार्थ करना है, तो ये छोटी मोटी संस्कार स्वभाव की बातें असर नहीं करती, मुझे हलचल का कारण नहीं बनना है, ये पक्का कर लो, मेरे कारण यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आने चाहिए। हमें यज्ञ के रक्षक बनना है, यज्ञ को विभाजित नहीं करना है। भगवान ने परिवार बनाया है, हमें तोड़ने के लिए निमित्त नहीं। यज्ञ शांति के लिए है, यज्ञ पवित्रता के लिए है, यज्ञ विश्व कल्याण के लिए है। यज्ञ माना क्या है? ये मकान थोड़ी, यज्ञ माना हम सभी, हम जीवंत यज्ञ है। हमें बाबा के यज्ञ को अखंड अमर रखना है। जो हम सहयोग कर सकते हैं हम करें, खुशी से करें, निर्संकल्प होके करें। बाबा ने कहा है जो बच्चे समय पर, कौन सा समय? जब भगवान को हमारे साथ की आवश्यकता है, संगम का समय, जब भगवान को समय पर एक धक से निर्संकल्प होकर जो बाबा के मददगार बनते हैं, उनको बाबा अंत तक मदद देने के लिए बंधा हुआ है, और ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए कितना भी बड़ा संगठन हो, कितने भी वैरायटी नंबरवार हम भाई बहने हैं, और दूसरा देखो, एक अटेंशन अगर आपको अपनी स्थिति पर है तो दूसरों के लिए चिंतन नहीं चले, ये ऐसा है वैसा है कैसा है टेढ़ा है बांका है जो भी है, जब हम ये सोचते हैं उस समय हम भूल जाते हैं ना कि मैं भी कैसी हूं, मैं भी तो परफेक्ट नहीं हूं, मेरे में भी तो कोई कमियां हैं। तो जब दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं, मीन्स खुद पर अटेंशन नहीं, हम अपने आप को भूल जाते, और हमारी पढ़ाई का पहला पाठ कौन सा है? खुद पर ध्यान दो, स्वदर्शन करो। पहला पाठ ही बाबा ने ये सिखाया। इसलिए रोज अच्छी तरह मुरली की स्टडी करो, बहुत अच्छी तरह बाबा की याद में बैठो। योग में बैठना माना चारों ओर से बुद्धि समेट जाए। बाबा ने कहा ना एक रस, कहीं कहते हैं ना योग में दो मिनट ऊपर जाते हैं फिर हम नीचे आ जाते हैं, घड़ी घड़ी बुद्धि इधर उधर जाती है, क्योंकि हम डिटैच नहीं हुए, न्यारे नहीं हुए। जब बाबा की याद में बैठो चारों ओर से न्यारे हो जाओ, बुद्धि से ऊपर उठ जाओ, बाबा के सामने शांति से बैठ जाओ, तो आप आनंद स्वरूप होकर वापस आए, आत्मा फ्रेश हो जाती। पर बाबा के सामने भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि दुनिया भर की पंचात बुद्धि में भरी हुई है, इसलिए अपने को डिटैच नहीं कर पाते। ऊपर गए ही नहीं बाबा के पास, बुद्धि के विमान से यहीं घूमते रहते हैं। इसलिए लाल लाइट से सफेद लाइट होते ही हिलने लगते हैं इधर उधर, क्यों भाई आप तो ऊपर गए थे आ भी गए, अचानक हिलने भी लगे, क्योंकि बाबा के सामने प्यार से बैठे ही नहीं। तो जितना ज्ञान योग क्वालिटी करेंगे कोई हलचल नहीं आएगी, फिर वो लौकिक वाले हों अलौकिक वाले हों, नौकरी धंधे की बातें हों या शरीर की बातें, कोई नहीं हिलाएगा। सेवा भी शुद्ध भाव से करनी, थोड़ा भी स्वार्थ रखेंगे तो बातें आती है, निस्वार्थ शुद्ध भाव से सेवा करो। पता है ना सत्कर्म का फल मिलना ही है, भगवान के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। एक समझदार इंसान भी किसी का कुछ लेता है तो जल्दी वापस करना सोचता है। समझदार व्यक्ति किसी का लेके रख नहीं लेता है। बाबा हमारा लेके रखेगा क्या? वो तो पदम गुणा रिटर्न कर रहा है। एक का पदम गुणा बाबा देते। तो वो तो मिलना ही है ना हमें, अच्छे का अच्छा मिलना ही है। आत्माओं से हम इच्छा क्यों रखें? हम आत्माओं से इच्छा रखते। दीदी ने मान नहीं दिया, फलाना आगे आ गया, नहीं कोई भी आगे आ जाए, हम है ही महान। बाबा के यज्ञ का मंत्र है त्याग तपस्या और सेवा। ये समय है त्याग का, सेवा का, तपस्या का। सभी तपस्या के लिए आए हैं ना। आत्मभिमानी बनने की तपस्या करो। एक बाबा दूसरा न कोई, ये तपस्या करो। कर्मेंद्रिय से अब मुझे कोई भी विकर्म नहीं करना, ये दृढ़ता अपने में करो, ये तपस्या। बहुत लंबे समय तक साधना करते हैं तब उसको तपस्या कहा जाए। दृढ़ता पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक। लक्ष्य क्या है? मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। विकार का कोई अंश मेरे में न, ये साधना है। तो लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता से लंबे समय तक पुरुषार्थ करना, उसको तप कहते हैं, उसको तपस्या कहते हैं। ये समय अंत का समय है, महापरिवर्तन का समय। प्रकृति की भी बातें आएंगी, मानव की भी बातें आएंगी। हम इस दुनिया के बीच में हैं तो आएंगी ना सब बातें। पर निश्चय हो, बाबा हमारा रक्षक है, बाबा हमारा साथी है। बाबा कहानी बताते हैं ना मुरली में, कि वो इतने पकती है उस भट्ठे में, बिल्ली के बच्चे थे पर कैसे बच गए। हम तो बाबा के बच्चे हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलता है वो सही सलामत है। कुछ हमारे अपने हिसाब किताब से कुछ नुकसान भी हुआ तो हमारे वर्तमान कर्म अच्छे हैं तो हमारे में सहन शक्ति भी आएगी, हिम्मत भी आएगी, हम उस परिस्थिति को पार कर देंगे। ऐसा नहीं उस समय बुद्धि उल्टी हो जाए, बाबा ने मदद ही नहीं की, मैं बाबा का बना तो भी मेरा नुकसान हुआ। हम बाबा के बने तो अच्छी बात है ना, कोई उपकार कर दिया क्या बाबा पर? कि हम आपके बने तो आप हमारे पाप नष्ट कर दो, हिसाब किताब खत्म कर दो, ऐसे थोड़ी है। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि एक द्वार बंद होता है दूसरे 10 द्वार खुलते हैं। हमें अपने भाग्य में विश्वास है। कोरोना में हुआ ना, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों के धंधे ठप हो गए, पर जिन्होंने हिम्मत रखी, श्रीमत को नहीं छोड़ा और अपनी तरफ से मेहनत करते रहे, फिर उठ गए, फिर उग गए। तो बातें आती है पर हमें पक्का रहे हमारा भाग्य और हमारा भगवान हमारे साथ है। ऐसे सब कुछ गंवाने के बाद भी भाग्य और भगवान तो साथ ही रहते हैं। फिर से मेहनत करें, कोई भी छोटे मोटी धंधा नौकरी करें, इसमें कोई देह अभिमान की बात नहीं। कोरोना में एक बहुत बड़ा ज्वेलर भाई बाबा का बच्चा, अब नौकरी नहीं, धंधे नहीं, कमाई नहीं, जो जरूरी चीजें हैं वही व्यक्ति खरीदेगा ना, ज्वेलरी कौन खरीदेगा? तो नेचुरली कमाई नहीं, उन्होंने सब्जी बेचना शुरू की। अपनी सोसाइटी में और फिर एक दो और भी साथी बन गए, गांव से होलसेल सब्जी लाके बेचते थे, फिर उग गए, फिर कमाने लगे। हमें पाप करने में शर्म करना है, मेहनत करने में नहीं। ईमानदारी से जो कुछ हम कर सकते हैं वो मेहनत हमें करना। इसलिए ऐसा नहीं कि भी बाबा ने मदद नहीं की, बाबा तो सदा है ही कल्याणकारी, मदद करने के लिए तो आया है। बाबा कहते हैं ना, मैं किस लिए आया, मुझे अचल रहना है बस, अवस्था नहीं बिगाड़नी। तो ये है ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, और एक बल एक भरोसा। बाबा मदद करे तो अच्छा, और ना करे तो है तो क्यों, हम बाबा से ऐसी इच्छा क्यों रखे? वो कर ही रहा है, उसने पूरे खजाने हमें दे दिए। ऐसा सत्य ज्ञान न होने के कारण पूरी दुनिया भटक रही, आज हम ठिकाने पर लग गए, लक्ष्य में आ गए, अच्छे पुरुषार्थ में आ गए। ये तो पढ़ाई चल रही है ना, चलो 2017 में बाबा लास्ट 31 दिसंबर आए, बाबा ने अपना पार्ट पूरा कर लिया, पर अभी भी हम तो पढ़ रहे हैं ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा का यज्ञ चल रहा है। अंत तक पढ़ते रहना, बाबा की याद में रहना, निश्चय नशा सदा बना रहे। बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारे तन में, मन में, धन में बरकत भरता, शक्ति भरते हैं। आज हम इतने ऊंचे नियम मर्यादाओं में चलते हैं, हमारे पवित्र योगी जीवन को देखकर कितनी मदद मिलती है, कितनी मदद मिलती है, लोग कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। पुरुषार्थ ही किस लिए कर रहे हैं? एक रस बनने के लिए। आज बाबा ने युक्ति बताई ना, तीन युक्ति बताई, देखो, एक बल एक भरोसा। बाबा का ही बल, बाबा का ही भरोसा। उस समय देहधारी याद ना आवे, हमें बाबा में विश्वास रहे। ठीक है, हम अपनी तरफ से प्रयास करें कि ये जो मेरे सामने तकलीफ आई है उसमें ये मदद कर सकते हैं, ये मदद कर सकते हैं, हम प्रयास करें, पर हम अंदर से अचल कि बाबा मेरे साथ है। दूसरी युक्ति बाबा ने बताई, सर्व शक्तियां अपने में धारण कर, अपनी शक्तियां इमर्ज कर, शक्तियों से भरपूर होंगे तो हलचल नहीं आएंगे। ऐसा ना, आधा जल भरा हुआ घड़ा आवाज करता है, भरपूर है कोई हलचल नहीं। शक्तियां योग से आती है। और बाबा ने कहा, सर्व संबंध बाबा से और मेरी सर्व प्राप्तियां भी बाबा से। आत्माओं से अपेक्षा नहीं रखनी है। जानते हैं ना, कलयुग के अंत में सब आत्माएं खाली हो गई है, तो उनसे क्या अपेक्षा रखनी। हम बच्चों का रोल है मास्टर दाता, हमें देना है, सबको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, सहयोग दो, राइट गाइडेंस दो, हिम्मत दो। हम बाबा के तरफ से निमित्त बने हुए बच्चे हैं, हमें मास्टर दाता बन देना है। लेने की इच्छा होगी तो हलचल आएगी। भगवान ने इतनी ऊंची नजर से हमें देखा, इतनी ऊंची भावना हमारे में रखी, अब और क्या चाहिए। इसलिए लक्ष्य पक्का करना है, कोई भी हलचल, समस्या, विघ्न, परीक्षा, हिसाब किताब कुछ भी आवे, हिलना नहीं, अपनी अच्छी स्थिति से पार करना। पसंद है हाँ? तो हाथ ऊपर कर, बाबा को बताओ हाँ? बहुत अच्छा। ओम शांति।
के गुजार ले।
सबको युक्तियां मिल गई हलचल में अचल रहने की। हाँ? तो एक हाथ हिलाकर दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।